الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری جا کے ناظرین پرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک ہی ہے اور اس ٹاپک کو لینے کی وجہ ماہ رمضان ہے, اور ماہ رمضان کے لیے یہ ٹاپک لینے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہلو کی طرف غور کرنا ہے جو آج میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے ایک رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں.
22 سالہ نوجوان نے کم آمدنی اور بڑھتی مہنگائی سے تنگ آ کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی.
22 سالہ نوجوان نے کم آمدنی اور بڑھتی مہنگائی سے تنگ آ کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی. یہ آپ نے اس کی پہلی رپورٹ سنی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آمدنی کم تھی, روزگار پر تھے مگر آمدنی کم تھی. جو رپورٹ ہے اس کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں, اور مہنگائی چونکہ ان کی آمدنی سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی, جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں. اور بدقسمتی کی خودکشی کے لیے, اور خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور جو بھی مسلمان دنیا سے جائے گا اگر خدا نہ خواستہ خودکشی بھی کی تو اس کے لیے بھی ہمیں دعائے مغفرت کرنی ہے. اگر یہ مسلمان تھے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ایک اور رپورٹ دیکھتے ہیں.
محنت کش نے معاشی طور پر پریشان ہو کر موت کو گلے لگا لیا. 30 سالہ بیگ بنانے والا شخص کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا تھا.
اب اس کا بھی یہی پرابلم تھا, برسر روزگار تھا اور کام کاج کرتے تھے, بیگ کا کام تھا اور روزگار کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر روزگار کی اگر کمی آ بھی جائے اور آپ کی آمدنی نہیں آ رہی اور آپ کی ارننگ نہیں ہو رہی ہے, لیکن گھر پہ تو 2 یا 3 ٹائم کا کھانا چاہیے, بچے بھی ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے, بجلی کے بل ہوتے ہیں, اگر گھر کرائے پر ہو تو یہ بھی ایک پریشانی سامنے ہوتی ہے, کیونکہ کرایہ دار بھی ہر کرایہ دار جس نے گھر کرائے پر دیے وہ بھی امیر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات گھروں کا کرایہ آتا ہے تو اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے, اب کرایہ آنا بند ہو جائے تو اس کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے اور پھر اس کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ آپ کو میں نے دوسری رپورٹ بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شخص جو تھا معاشی طور پریشان ہو کر اس نے موت کو گلے لگا لیا. اب واللہ اعلم اس ان کی کیا مراد ہے موت کو گلے لگا لیا. اگر خودکشی کی تو خودکشی حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. آپ کو میں تیسری رپورٹ دکھاتا ہوں.
معاشی حالات سے دل برداشتہ شخص نے بیوی بچوں سمیت زہر کھا لیا. ایک بچی جہاں باغ, رشتہ داروں کے مطابق یہ کافی عرصے سے بے روزگار تھے اور ان کے گھر کئی دن سے راشن نہیں تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ بیان ریکارڈ کر لیا ہے, ان کے معاشی حالات بہتر نہیں تھے.
اب یہ تیسری رپورٹ جو آپ نے دیکھی, دل برداشتہ ہو کر اس نے بیوی بچوں سمیت زہر کھا لیا. اب بیوی بچوں سمیت زہر کھا لینا, یہ اس پہ 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. قتل بھی آ جاتا ہے, تو اس نے اگر زہر کھا لیا بچوں کو قتل کر دیا یا جو بھی اس کی وجہ ہو, اور خود بھی خودکشی کر لینا, خود زہر کھا لینا, ظاہر یہ سب چیزیں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور اب رشتہ داروں کی طرف سے بھی جو باتیں آئی ہیں وہ بھی یہی تھا کہ معاشی پریشانی تھی, گھر میں کھانے پینے کو نہیں تھا. تو یوں اگر میرے پیارے اسلامی بھائیو آج اگر میں آپ کو یہ رپورٹیں دکھانا شروع کروں کہ جس میں غربت کے ستائے باپ نے 4 سالہ بیٹی کو خود سے باندھ کر نہر میں کود کر اس نے خودکشی کر لی, تو یہ پوری رپورٹس ہیں میرے پاس, یہ میرے ہاتھ میں اور بھی چیزیں ہیں. اب یہ ہے ایک ایشو جو میں آج سبق کاموز خبروں میں آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ چاہے مدری چینل پر ہیں یا سوشل میڈیا پر ہیں یا دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ایک نہیں ہے, ایسی سینکڑوں چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. آئی تھنک کہ شاید آئے دن मीडिया पर भी इसकी कवरेज आती हो तो इतना मुझे पता नहीं है, अखबारात में भी इसकी कवरेज डेफिनेटली आती होगी और ये सब तकरीबन वहीं से रिपोर्ट होती हैं। ये वो चीज़ें जो हमारे पर रिपोर्ट होती हैं, जो हमारे पास इसकी खबरें आती हैं। ना जाने दुनिया में रोज़ाना कितने ही लोग रोज़गार की वजह से, रोज़गार की कमी की वजह से, माशी परेशानी की वजह से, रिस्क में तंगी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से और इस तरह की ये वजह, मैंने वजह यही बताई, और भी वजूहत होती हैं लेकिन मेरे सिर्फ एक वजह, आज हमारा फोकस यही वजह है जिसकी वजह से ये जहनी तौर पर उनको क्या हो जाता है कि बदकिस्मती के साथ या तो खुदकुशी कर लेते हैं या पहले कत्ल करते हैं अपने बीवी बच्चों का, फिर खुद ही अपने आप को भी खुदकुशी का शिकार कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे इस सोसाइटी में बढ़ रही हैं, इसको रोकने पर आज हमने ये प्रोग्राम करने की मेरी नीयत की थी कि ये कैसे किया जा सकता है। नंबर एक, अल्लाह पाक पर तवक्कुल बढ़ाना। अल्लाह पाक रिस्क का मालिक है, वही रिस्क देने वाला है। वो फरमाते हैं ज़मीन पर रेंगने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे करम पर ना लिया हो। सूरह 12वां पारा जो है कुरान पाक का 12वां पारा शुरू ही इस आयत करीमा से होता है। तो रिस्क अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे करम पर लिया है, लिहाजा रिस्क की तंगी की वजह से अगर कोई अपनी जान लेता है या किसी की जान लेता है वो कितनी बड़ी ज्यादती कर रहा होता है। तो अल्लाह पाक पर तवक्कुल, कि अल्लाह पाक पर भरोसा, कि अल्लाह पाक इतनी बड़ी उसकी बड़ी रहमत है कि वो आप देखें कि परिंदा अपने घोंसले से भूखा निकलता ज़रूर है लेकिन परिंदा अपने घोंसले भूखा जाता नहीं है। चरिंद परिंद जानवर हैवान समुद्र के अंदर, ज़मीन के अंदर, हवा में उड़ने वाले, हर तरफ आप देखें तो अल्लाह पाक ने सबके लिए रिस्क अता फरमाया हुआ है। और जब रिस्क पूरा हो जाता है तो दुनिया से बंदा चला जाता है। लिहाजा इस वजह से कि मेरा रिस्क नहीं है, मेरी तंगी है, अपने आप को खुदकुशी की तरफ लेके जाना ये खुद पर और दूसरों पर जुल्म करना है और इससे बचना चाहिए। और इस पर हमें मालूमात फराहम करनी चाहिए, मीडिया को मालूमात फराहम करनी चाहिए, पेपर मीडिया को मालूमात फराहम करनी चाहिए, वेब मीडिया को मालूमात फराहम करनी चाहिए, इस पर वर्कशॉप होने चाहिए, तरबियती सिलसिले होने चाहिए, इस पर बाकायदा प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। ये फर्क पड़ता है, देखिए अवेयरनेस से फर्क पड़ता है। आप हाईवे पर जा रहे होते हैं, हाईवे पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर लिखा होता है तेज रफ्तारी तबाहकारी, गाड़ी टूटी फूटी सी लगाई हुई होती है, आपकी जब नजर उस मतलब बोर्ड पर पड़ती है थोड़ा सा आपका एक्सीलेटर से पाँव हटता है कि नहीं नहीं है, ये चंद मिनट आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। एक वर्ड लिखा हुआ होता है आप समझ जाते हैं कि ये मुझे पैगाम दिया जा रहा है कि इजी चले, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हादसा हो जाए और मौत का शिकार हो जाए। यूँ आते जाते चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि जो हमें मालूमात फराहम कर रही होती है। तो अगर कोई अल्लाह ना करे किसी के जहन में ऐसी कोई बात है कि जनाब हमारी तंगी बहुत है, परेशानी बहुत है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं है, तो राशन के लिए पैसे नहीं है, अब सहरी इफ्तारी आ रही है, असल में ये बड़ा मतलब कि हसास मौजू है सहरी इफ्तारी, और सहरी के लिए घर में खाने का ना होना, इफ्तारी में घर में प्रॉपर खाने का ना होना, फिर आस पड़ोस की बातें सामने आना, खाना और रिश्तेदार की बातें सामने आना, बच्चों का कहना कि खाने को नहीं है, मैं किससे सहरी करें, किससे इफ्तार करें, रोज़ाना इसी तरह होता है, वगैरह 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 वगैरह। तो ये खुद ही माँ बाप को बड़ा मतलब बेचैन कर देता है, फिर वो ऐसा रास्ता इख्तियार करते जो इनको नहीं करना चाहिए। तो नंबर एक, अपने रब पर भरोसा करें, और ये हराम मौत का रास्ता, कत्ल का रास्ता और इसी तरह मतलब के बुरा, कोई भी बुरा रास्ता, चाहे वो रोजगार के ताल्लुक से, कमाने के ताल्लुक से, ये रास्ते अख्तियार करने के बजाय क्यों ना हम अपने रब के हुजूर हाजिर होकर दुआ करें, इस्तिगफार करें, अल्लाह पाक हमारे रोजगार में, रिज़्क़े हलाल में बरकत दे, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद सुन्नत के मुताबिक हाथ धोएं, मुंह का अगला हिस्सा धोएं जिसको खाने का वजू कहते हैं, इंशाल्लाह आपके दस्तरखान में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा। जब घर में दाखिल हों तो घर में दाखिल होते ही आप घर वालों को सलाम करें, घर में कोई नहीं तो बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज करें और एक बार सूरह इखलास की तिलावत करें, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ें, आप देखिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके रोजी में और आपके आपके माल असबाब में कैसी बरकतें अता फरमाता है। तो यूँ मतलब के रोजगार में बरकत के जो हमारे पास हदीसों में चीजें आई हैं उसको अगर पढ़ेंगे और वो काम के जिससे बरकत चली जाती है उसको अगर हम पढ़ लें, उस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। ये तो एक पहलू है जो खास उनके लिए है जो खुदा ना खासा इस तरफ सोच रहे हैं या इस तरफ उनकी तवज्जो जा रही है, और तो बिल्कुल आप इस तरफ ना सोचिए और अपने रब की रहमत पर नज़र रखिए। रिस्क अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में है, वही हमें रिस्क देने वाला है, वो वही इंशाल्लाह हमें अपनी रहमत से वही रिस्क अता फरमाएगा। ये हो गया इस पूरे उसका एक पहलू। अब आते हैं दूसरे पहलू की तरफ। दूसरा पहलू मुझे जो इस वक्त जो एक जहन में बात है, जो एक पेन है, वो यही है कि लोगों के ये शहरी इफ्तारी और लोगों के जो घरों पे जो इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी और तंगदस्ती का जो इस वक्त तूफान आया हुआ है, वो उसको ज़रूर सामने रखना। और ये आया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हमारे पास रिपोर्ट है महंगाई के ताल्लुक से, आइए पहले वो रिपोर्ट भी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मज़ीद मैं आपको आगे लेकर बढ़ाता हूँ।
दुनिया भर में कीमतों में इतना इजाफा क्यों हो रहा है और सबसे ज्यादा महंगाई किस मुल्क में हुई है? गुज़िश्ता बरस और रवां साल कीमतों में इस हफ्ता से इजाफा हुआ जो इससे पहले 5 दहाइयों में नहीं देखा गया था। बड़ी मईशतों में जो एक मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो अमेरिका है, इसके बाद अर्जेंटीना और तुर्किया में महंगाई की शरह ज्यादा है, जबकि महंगाई की लहर से बरतानिया भी महफूज नहीं है। लंदन शहर में महंगाई के साथ ज्यादा नुमाया देखने में आए। तरक्की याफ्ता ममालिक की इक्तिसादी तआवुन और तरक्की की तंजीम OECD के मुताबिक अमेरिका में कीमतों में गुज़िश्ता साल 4.7% की सालाना शरह से इजाफा हुआ, जो कि तरक्की याफ्ता मईशतों के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा तेजी से होने वाला इजाफा बनता है। पिछले साल महंगाई में इजाफा करने वाले अवामिल जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में रुकावट पैदा होना, फसलों को नुकसान पहुँचने के बाद खुराक की कीमतों में इजाफा होना शामिल है।
तो ये जो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी कि महंगाई की वजूहत, ये भैया इसके अलावा भी महंगाई की और भी कई वजूहत है, तो ये बात तो मतलब के एक तयशुदा है कि महंगाई बढ़ी है। अब बाज़ों की महंगाई के साथ साथ उनकी इनकम में भी इजाफा हुआ है, सबके सब ऐसा नहीं कि जिनकी इनकम में इजाफा नहीं हुआ है, कईयों के बिजनेस में इजाफा हुआ है, कई बिजनेस सेक्टरों ने तरक्की की है। दुनिया का एक मुख्तलिफ अंदाज चल रहा होता है कारोबार का, लेकिन स्पेशली जो जॉब सेक्टर है, जो जॉब करते हैं, इनकी सैलरीज में इतना इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, दुनिया में जहां महंगाई है, तो दुनिया में जहां महंगाई है तो वहां पर महंगाई से लड़ने और महंगाई के लिए एक सर्वाइव करने के लिए और महंगाई का मुकाबला करने के लिए वहां की जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनके पास बाद वक्त मुख्तलिफ ऐसी सब्सिडीज और मुख्तलिफ ऐसी सहूलियात मुहैया कर दी जाती हैं। लेकिन चंद मुल्क ऐसे जैसे हमारा मुल्क भी शामिल है कि वहाँ पर इस तरह की अवामी तौर पर वो तरकीब बन नहीं पाती और लोग अपनी आमदनी को देखते हैं और महंगाई को देखते हैं, तो कहीं से भी इनकी मतलब के वो सपोर्टिंग पिलर कहीं भी नहीं है कि जो एक आदमी सर्वाइव कर सके। क्या चलो महंगाई है तो इधर दाएं बाएं से कहीं ना कहीं से कोई ऐसा सपोर्टिंग चीज़ें आ जाती है ताउन करने वाली कि हो जाए। अब आप और हम हैं, यानी कि वो यूज कहें कि मैं आशिका ने रसूल के जो जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है, मैं अब उनसे दरख्वास्त करने जा रहा हूं। आप लाखों में हैं जिनको अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि वो अपने समेत कई घरों के अखराजात को बर्दाश्त कर सकते हैं, बेर कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी तादाद लाखों में है, लाखों लाख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ करना इतना है कि हमें इस बात की तरफ गौर करना है और ऐसी कोई वर्किंग कर लेनी, ऐसा कोई होमवर्क तैयार कर लेना जिससे आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये वो एरियाज हैं, ये वो फैमिलीज हैं कि जहां पर मुझे ये काम करना। अभी मैं फिलहाल आपको किसी भी माह रमजान के ताल्लुक से आपको दरख्वास्त करूंगा कि बहुत सारा इफ्तार का निज़ाम जो है ना हमारा सड़कों पर भी है, बहुत सारा इफ्तार का निज़ाम हमारा मस्जिद में भी है। ठीक है, अच्छी अच्छी नीयतें होंगी और शरीयत के मुताबिक जहाँ होगा इंशाल्लाह ताला सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप घर के बारे में सोचिए, मस्जिद में जाकर तो मर्द खा लेंगे, ये बच्चे और औरतें कहाँ जाएंगी? घर पे भी सड़कों पर हर आदमी नहीं बैठ जाता। अगर इस तरह का जो दुनिया भर में इफ्तार का जो जहन रखते हैं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी आप इफ्तार का जहन रखते हैं कि मैं इफ्तार कराऊँ, तो इसकी अगर मैं मालियात पर भी अगर गौर करूँ ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इफ्तार करवाई जाती हैं और दुनिया भर में इफ्तार करवाने का एक रुझान होता है जो आउटसाइड द हाउस होता है, यानी घर से बाहर के मैं बात करूँ, जिसमें मस्जिद भी हैं, सड़क भी हैं और बहुत सारे एरियाज भी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन मुल्कों में जहाँ गुर्बत भी है, हर मुल्क में गुर्बत नहीं है इस तरह, लेकिन वहाँ गुर्बत भी है, तो अगर ये सारी इफ्तार कराने वाले अगर इस तरफ भी गौर कर लें कि आपका अगर इस तरफ रुख हो जाता है कि आपकी इफ्तार घरों में पहुंच जाए, बल्कि मैं कहता हूं एक रोजाना इफ्तार कैसे आप पहुंचा सकेंगे, इस तरह के घरों में अगर आप महीने के बल्कि रमजान के इब्तदा में या इब्तदाई दिनों में ही 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार रुपये भी अगर आप पहुंचा देते किसी के घर में, मैं आपको बताऊं कि एक नॉर्मल घर में 10-15-20 हज़ार रुपया रमजान के उसमें चला जाए ना, एक रमजान गिफ्ट चला जाएगा, रमजान मुबारक का गोया का एक तोहफा है आपके लिए। और वो मशा वाला आप देखिए कि उनकी रमजान की सहरी इफ्तारी और कई बुनियादी जरूरतें अल्लाह ने चाह तो पूरी हो जाएंगी। जो अल्लाह के बंदों की हाजत पूरी करता है, अल्लाह पाक उसकी हाजत पूरी फरमाता है। आप लोगों की जरूरतें अपनी मतलब के पोजीशन के मुताबिक पूरी करेंगे, अल्लाह पाक हमारी हाजतों को अपनी शान के लायक, अपने शान के मतलब शाया निशान पूरी फरमाएगा। तो और ये अल्लाह ताला का वादा है कि जब तक आप किसी मुसलमान की मदद करते रहेंगे, आपकी मदद होती रहेगी, आपकी हाजत पूरी होती रहेगी। और अल्लाह की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है, घटने की कोई सूरत ही नहीं है। सब और खाना खिलाना जन्नत वाजिब करने वाले कामों में से है। और इस वक्त जो बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से खुदकुशियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, लूटमार मच रही है, वो रोजगार का है। तो एक तो मैं आपकी तवज्जो जो स्लाइड्स आपको मैंने दिखाई हैं, एक ये कहूंगा कि खुद अगर हो सके तो आप ये सहरी इफ्तार के तौर पर या रमजान पैकेज के तौर पर, रमजान की ईदी के तौर पर आप इस तरह की फैमिलीज को लें, शरीयत के दायरे में रहकर अपने माल हलाल से आप इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए किसी की इज्जत मजरू ना हो जाए, कोशिश करें कि एक अच्छे डिसेंट एक रिस्पेक्टेबल अंदाज के अंदर आप उन तक अपनी ये पहुंचाएं। अगर सैयद व सादात की खिदमत की सादत मिलती है तो जाकर खुद ही अपने मतलब के हाथों से इनके कदमों में ये अपना मतलब नजराना हाजिर करें, अगर ये कबूल फरमा ले तो ज़ाहिर नसीब, और अल्लाह ने चाहा तो अगर सैयद साहब खुश हो गए, अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दी, तो क्या अजब कि आका दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन सैयदों के नाना जान हैं, इनकी शफाअत के सदक़े में हमें बिला हिसाब जन्म दाखिला नसीब हो जाए। तो मामला उस्सास है, बड़ा सेंसिटिव है, ज़्यादा उसको सीरियस लेना होगा। आपके घर में मुलाजिम है, मुलाजिमा है, चौकीदार है, गार्ड है, इसी तरह आपके ड्राइवर हैं, इसी तरह और भी दो चार दूसरे घर में हमारे होते हैं, तो ये उमूमन ये तो अमीर लोग नहीं होते, इनकी सैलरी तो आप खुद दे रहे होते हैं। इसी तरह बाहर मतलब के रक्षा ड्राइवर और ये सारे ये ठेलों पर जो फ्रूट फल बेचने वाले जो लोग होते हैं, ये कौन होते हैं? इनका इनके बारे में कभी आपने सोचा? ये क्या अमीर लोग होते हैं? यानी हम कोई ब्रांडेड चीज़ या कोई ऐसी चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो 10 हज़ार की चीज़ 10 हज़ार में खरीद लेते हैं। हमें बोलते हुए भी अजीब सा लगता है कि यार इनको मैं 9 हज़ार कैसे बोलूँ, इनको 9,500 कैसे बोलूँ, थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे। कई ऐसी शॉप्स है जिसको आप डिस्काउंट नहीं करते, हालांकि उनकी अर्निंग, उनकी आमदनी और उनके प्रॉफिट ऑफ रेशो जो हैं वो आपको भी शायद अंदाजा होगा कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम ये गरीब लोगों से जब सौदा सर्फ लेने के लिए जाते हैं, फल फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, तो देखने जैसा होता है कि कितना हम लोग इनसे खींच खिंचा कर डिस्काउंट करवाते हैं। ठीक है, बार्गेनिंग कराना ये अच्छी बात है, बार्गेनिंग कराने का मना नहीं कर रहा, बार्गेनिंग कराना है अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि यार यहाँ पर मैं कुछ खैर ख्वाही का काम कर सकता हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा कि ये खैर ख्वाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यूँ मतलब कि बहुत ज़्यादा तबका आते हैं, हमें लगता है कि यार कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमारे सामने बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं। तो एक तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह आप मुस्तहिक लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की, स्पेशली जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, ये कोई सड़कों फुटपाथों पे बैठ कर खाना खा लें, ये मतलब जाकर खाना खा लेंगे नहीं, ये तो मतलब वहीं अपनी मतलब के इज्जत के मारे ही मतलब के इनका साहब इनका बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी। तो यूँ आपको देखना पड़ेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है, एज ए नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत का एहसास और दर्द होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं और अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत की तौफीक और सादत अता फरमाएं। इसी तरह आपने देखा होगा कि बेरोजगारी की वजह से भी तो आम ये भी कर सकते हैं कि किसी का रोजगार हमने लगा दिया, ये बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना कि मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दो। और वैसे भी मतलब कि परिंदे को भी देखें तो परिंदा अपने बच्चों के लिए घोंसले नहीं बनाता, परिंदा अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। तो हम मतलब कि ये भी काम कर सकते हैं कि इस तरह के जिनकी आप मालूमात ले लें, कोई रिपोर्ट्स मिल जाए तो आप उनको एक मुनासिब सा रोज़गार दे सकते हैं कि आप उनको रोज़गार अच्छा दे दें, कोई से रोज़गार की सूरत बन जाएगी, इसका अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा, अगर कोई जॉब लेस है और आपको अल्लाह ताला ने कुछ अपॉर्चुनिटी दी है तो आप उनको जॉब ऑफर कर दें, तो हो सकता है कि किसी के घर में आमदनी का सिलसिला शुरू हो जाए और अल्लाह ताला बेहतर करे कि वो घर किसी भी गलत रास्ते पर जाने के बजाय अल्लाह ने चाह तो वो एक दुरुस्त रास्ते पर वो रहेगा और चल पड़ेगा। इसी तरह एक और ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है सैलरी का। अगर अल्लाह पाक ने आपको वसअत दी है और आप में से कई ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने वाकई वसअत दी है, खुद आप अपना अगर मंथली इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं तो उसमें जो अमाउंट है वो आपको पता होगी कि आपका अमाउंट कितना ज़्यादा है, और उस अमाउंट से आप बिजनेस ही बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, आप जो भी बढ़ा रहे हैं, खैर वो आपका अपना लुक आफ्टर है, वो आपका अपना मतलब कि पर्सनल मैटर है, मैं उसमें तो डेफिनेटली इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन खैर ख्वाही उम्मत के जज्बे के तहत कि अद्दीन व नसीहा हदीस पाक में दीन खैर खाई का नाम है, दीन भलाई का नाम है, एक उसको सामने रखते हुए मैं ये अर्ज करूंगा, आप अगर अपना ईयरली इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, आप देखिए कि यार इतना मतलब कि 8-10 करोड़ रुपया मेरा मतलब कि नेट प्रॉफिट अगर आ जाता है, इससे अगर मैं 1.5-2-3 करोड़ रुपया अगर साल का मैं अपने एम्प्लॉयज की और अपने आसपास वालों की सैलरीज बढ़ा देता हूँ तो कितना अच्छा हो जाएगा यार, मेरे मेरे नफ़े में कितनी कमी आ जाएगी, बल्कि मैं आपको बताऊँ नफ़े में कमी भी नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला इनकी दुआएं, इनकी हमदर्दियाँ, इनका खुलूस और इनकी आपसे मोहब्बत आपके बिजनेस को बढ़ा देगी। आप देख करके तो देखें, और ये कर सकते हैं, जिनका मैं इस वक्त तस्करा कर रहा हूँ इन इन इनकी भी एक बड़ी तादाद है कि जो अगर अपनी वे ऑफ अर्निंग को देखते हैं और अपना फाइनली इनकम स्टेटमेंट अगर देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं और अपना जब नेट प्रॉफिट देखते हैं तो उसका एक अच्छा खासा अमाउंट है, जिसमें से आप अगर गौर करें, ये ज़कात के अलावा बात कर रहा हूँ, जी हाँ ये ज़कात के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको गौर करें तो लाखों लाख फैमिलीज को ये सारे जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा खुद कफील कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जॉब करने वालों की तादाद लाखों में, करोड़ों में लोग जॉब कर रहे हैं, करोड़ों में लोग जॉब कर रहे हैं, और उनमें एक तादाद वो है जिनकी सैलरी 20-25,000-30,000 से ऊपर नहीं है, जो कर रहे हैं मैं उनका कह रहा हूँ, 15 वाले भी हैं, 12,000 वाले भी हैं। आप सोचिए कि आज के दौर में 15,000, 20,000 और 12,000 या 25,000 रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल काम है ना, कितना मुश्किल काम है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा खास तौर पर उन लोगों से जिनकी एक एक होटलिंग 25-30-50,000 रुपए की एक एक होटलिंग हो जाती है और उनकी मतलब कि एक ट्रेवलिंग 1-2-3 करोड़ रुपए की हो जाती है। आज उम्मत पर वक्त है, एक बड़ा बड़ा परेशानी वाला वक्त है, हम अगर अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को रिड्यूस करके, कम करके या ख़त्म करके इन मुस्तहिकीन की और इन ज़रूरतमंदों की मदद की तरफ अगर हम चले जाते हैं, आप गौर करें कि अल्लाह पाक की रहमत से किस कदर हम अपने माशरे में तब्दीली ला सकते हैं। मैं चंद मुल्क के गरीब जो मुल्क कहलाते हैं, इतने ज़्यादा माशी तौर पर अवामी तौर पर इतने ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है, मैं उन ममालिक में जाकर देखा तो उनमें भी वो लोग हैं, तो मैं तो इस बात की तरफ आऊँगा जो अमीर अहले सुन्नत ने कुछ अरसे पहले भी फरमाए थे, अब भी फरमाते हैं, अगर दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं, दुनिया भर के वो तमाम मुसलमान, दुनिया भर के वो तमाम मुसलमान जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, जो साहिब निसाब हैं, जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, अगर वो अपनी फ़र्ज़ ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं, एक मुसलमान भी आपको इंशाल्लाह गरीब नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे साल दो साल के अंदर ये शायद आप ज़कात लेकर निकलेंगे, वो ज़कात लेने वाला नहीं होगा। जबकि हम इस काम को सिंसेरिटी के साथ और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उसके साथ करने में कामयाब हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। हम दीनी इदारे हैं या इस तरह के जैसे दावत इस्लामी या दीगर इस तरह के जो इदारे होते हैं, हमें इनकी यकीनन मदद करनी है, और इनकी मदद में भी बहुत सारा ये दीन का फ़ायदा होता है। मैं आपको जैसे दावत इस्लामी 52,000 एम्प्लॉइज़ के साथ चल रही है, तो अगर 52,000 एम्प्लॉइज़ जिनकी हम तस्करा करते हैं, जिनको दावत इस्लामी सैलरी देती है, और हमारी सैलरी तकरीबन 1.5 अरब रुपया महाना है, 1.5 अरब रुपया महाना है कमोबेश, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये सैलरीज घरों में जाती है ना, ये भी बहुत बड़ी एक वेलफेयर है और एक बहुत बड़ा दीन का काम है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो इस तरह हमारे दावत स्तर में 52,000 एम्प्लॉयज हैं, देखिए दुनिया भर में तो करोड़ों एम्प्लॉयज हैं। हम भी अपने डोनेशन को बढ़ता देख कर सैलरीज बढ़ाने पर हमेशा गौर करते हैं, सारे हमें डोनेशन मिलेगा तो हम सैलरीज इनके इंक्रीज ही करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इनको बोनस भी देंगे, तो हमारा डिपेंड करता है उसके ऊपर, डोनेशन के ऊपर, कि डोनेशन हमारे पास कितना आया कि जिसको हम इस तरह तकसीम कर सकें कि हम सैलरीज अच्छी कर सकें। लेकिन जिनके अपने प्राइवेट बिजनेस हैं और जिनके अपने प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 200 एम्प्लॉयज़ हैं, 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं, जी हाँ हैं, 10,000 एम्प्लॉयज़ के हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जिनके बड़ी बड़ी बहुत बड़ा मतलब के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, लेकिन आप उनकी नेट इनकम देखें तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा सकते हैं, इनके मेडिकल में इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनको एक या दो टाइम का खाना वॉलेंट्री दे सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप से गौर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया भर के मुसलमान, चाहे आप दुनिया भर में जहाँ भी मुझे देखें सुने या देख रहे हैं सुन रहे हैं या देखेंगे या सुनेंगे, हम सब इस तरफ गौर करें कि हम अपने इन गरीब मुस्तहिकीन जो रिश्तेदार हैं, ये भी आम जो गरीब मुस्तहिकीन या गरीब लोग या ज़रूरतमंद जो मुसलमान हैं वो भी, और उसके साथ साथ जो हमारे जो दीनी इदारे जो दीनी काम आशिकान रसूल जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करते हैं, जैसे मैं दावत इस्लामी के बारे में आपको कह रहा हूँ, तो हम गौर करें और इंशाल्लाह ताला आप इस तरफ अपना रुख करें, अपने आप को थोड़ा पीछे हटाएं, इस जगह पर थोड़ा आगे लाएं, अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह ताला एक एक मुसलमान मिलकर दूसरे मुसलमान की अगर मदद को आ जाएगा रब ने चाहा तो बहुत आसानी हो जाएगी। कि मुसलमान की और मुसलमानों की खूबसूरत शान और पहचान बयान की गई है कि वो एक जिस्म की तरह है, मुसलमान कौम एक जिस्म की तरह है कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती तो सारा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है, एक इंट दूसरी इंट को तकवीत देती है। मोमिन वो जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। हम पढ़े तो सही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस मतलब हमें आपस में किस तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर रहना है और किस तरह हमें एक दूसरे की मदद और गमखारी करनी है। इस पर मैं खुलफ़ाए राशिदीन का तस्करा जब पढ़ता था जो मैंने पढ़ा है तो सैयदना मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों की सीरत पाक में अलहदा अलहदा मैंने पढ़ा है कि वो किस तरह एक गरीब घरानों की जाकर मदद क्या करते थे, इनके घर पर राशन पहुँचाते थे, इनके बच्चों को पका कर खिलाते थे और किस तरह मतलब कि एक गरीब घर की इन्होंने मतलब कि अपने जिम्मे एक वो मतलब ले रखी थी जो अपनी वो दे रहे थे कि जिसको माशाल्लाह हम एक मॉडल है हमारे हमारे लिए ये इनकी खिदमत जो इन्होंने माशाल्लाह अंजाम दी हैं। तो ये चीज़ें हुआ करती हैं। सैयद उमर फारूक के आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में भी इसको हमने देखा है। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की सीरतें तो इस तरह खुद हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह कसरत से कर्ज दिया करते। जी हाँ, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कसरत से बहुत ज़्यादा कर्ज देते थे और कर्ज देते फिर माफ़ कर देते थे। ये मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत है। तो आज इतना ही है और आखिर में अपनी ग़िज़ाओं को अपने अनाज को ज़ाया होने से बचाएं। तो माह रमज़ान में भी इसका मतलब अगर मैं कहूं कि जो सड़कों पर जो फल फ्रूट और इफ्तार का एहतमाम होता है, मसाजिद के जो फल फ्रूट और एहतमाम होता है उसमें हमारी वो चीज़ें भी रखी जाती हैं। अच्छा, अब एक ही फ्रूट का थाल है, उसी फ्रूट के थाल के अंदर वो क्योंकि फ्रूट तो पानी निकलता है उसी में तली हुई चीज़ें भी डाल दी हैं। अगरचे इसके ऊपर कलाम हो सकता है, प्याज भी होती है, मुँह में बदबू आ सकती है और भी इस पर कलाम हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये माले मुफ दिले बहरे वाला निज़ाम नहीं होना चाहिए। वो सारा मतलब कि वो जो फल फ्रूट के साथ चीज़ें रखे, कई चीज़ें तो खाने जैसी भी नहीं रहती, फिर तो जितना खाया खाया, जो बच गया उसका क्या हुआ। तो कई ऐसी आपको जगहें आपको पता चल जाएंगी अगर आप गौर करेंगे कि जहाँ पर इतना खाना ज़ाया होता है, इतना खाना ज़ाया होता है कि अलमान वल हफीज। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार है, आइए देखते हैं।
अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयार की जाने वाली तकरीबन एक तिहाई खुराक जाया हो जाती है। सालाना 1.3 अरब टन खुराक के ज़ियां से $940 बिलियन का मुआशी नुकसान होता है, जबकि 9 में से 1 शख्स ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहता है। धरती पर मौजूद 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने के लिए सालाना तकरीबन 3.7 बिलियन मैट्रिक टन खुराक की जरूरत होती है। अक़वामे मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त दुनिया तकरीबन 4 बिलियन मैट्रिक टन खुराक पैदा करती है, लेकिन तकरीबन 1.3 बिलियन टन जाया हो जाती है। इसके बाइस 1 अरब लोगों को भूख के मसले का सामना है।
अब गौर करें कि ये जो गिजाएं ज़ाया हो रही हैं, ना ज़ाया हो रहे, फल फ्रूट जो है ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा, कई और खाने पीने की चीज़ें ज़ाया होती हैं, बाज़ औक़ात बड़े बड़े दस्तरखान बिछाए जाते हैं और यूं उठा लिए जाते हैं, यूं उठा लिए जाते हैं। इसी तरह हमारी दावतों के अंदर, हमारे खुद हमारे घर के जो दस्तरखान है, जब भी सहरी इफ्तार होगी, अब वो सहरी में खाना बच गया तो अब रोज़े रख लिए, तो वो खाना क्या करें, क्या ज़ाया कर देंगे हम? इफ्तार हुई, खाना खाया, अब पेट भर गया, तो उसको ज़ाया कर देंगे हम ना? ये आज तय कर ले मेरे प्यारे सब भाइयों, माह रमज़ान की अल्लाह आपको और मुझे बरकत अता फरमाए, हमने खाना ज़ाया नहीं करना। आपको नहीं खाना, आप उसको ऐसे को दे दे रहे जिसके पेट में चला जाए। अगर ये खाना खाने के काबिल है तो इसको फेंक ले, क्या क्या मतलब के वो बनता है ना, नहीं फेंकना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी के तालु से फरमाया कि इसकी इसका इकराम करो, ये जिस कौम से गई है लौट कर नहीं आई है। अल्लाह पाक की नेमत है ना, अनाशा अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है। आप अपने चावल के जो बर्तन है, जिस पतीले में या जिस बर्तन में आप या जिस पॉट में आप चावल बनाते हैं, आप देखिए चावल कितना इसके वो रह जाता है, कितना सालन रह जाता है, कितना फ्रूट रह जाता है। खुद आपकी प्लेट के अंदर जो आपने निकाला कितना रह जाता है, फ्रूट निकालते फ्रूट कितना रह जाता है, यानी ये सब्जियां फ्रूट ये सब कितना ज़ाया हो रहा होता है, पकाते हुए ज़ाया हो रहा है, निकालते हुए ज़ाया हो रहा है, सालन निकालते सालन डालते हुए चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। और जो फ्राई खाते हैं तो दो चार फ्राइयाँ खाई उसके बाद इतना सारा वो, मैंने खुद देखा यार, जो फ्राई पता नहीं कैसी फ्राइयाँ खाते हैं ये। एक तो फ्राई वैसे ही इसके ताल्लुक से जो ये मुजीरे सेहत है या नहीं है, इसको तो अमीर सुन्नत के बहुत सारे मदनी फूल और मदनी मुजाकरों में नसीहतें हमारे लिए मौजूद हैं, लेकिन पका ही रहे खा ही रहे तो उसको ज़ाया तो ना होने दे यार, इतना वेस्टेज। दुनिया में 1 अरब आदमी खाने की किल्लत का शिकार है, जबकि खाना है, दुनिया में अनाज है, अल्लाह पाक ने अता किया है, प्रोडक्शन है, मगर क्या जाया कर देते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रोकने की कई जगह कोशिश की है। मैं 1 अरब दुनिया में था, वहां पर हमारे लिए दावत इस्लामी का जैसे दीनी काम के लिए मैं गया था, तो वहां पर एक दावत की गई और दावत भी बड़ी मतलब दावत थी। जब हम खाना खा चुके तो अब इतने सारे हल्के बने हुए थे, खाना था, गोश्त था, चावल थे, बहुत कुछ रखा हुआ था दस्तरखान पर। अब मैं देख रहा हूं, मैंने कहा यार ये क्या जाया होगा, मेरा सुबह ये बैठे हुए थे लोग, मैंने कहा ये आप फेंक देंगे। आपको बताओ, इन्होंने कहा कि देखिए वैसे तो हम यहाँ फेंक देते हैं, लेकिन अभी आप बता रहे हैं तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, हमारे ये जो वर्किंग करने वाले लोग हैं ये इसको ले जाएंगे। यार क्यों फेंक, यानी इन्होंने कहा कि फेंक देते हैं, हम फेंक देते हैं, यानी वो अगर फेंकने पर भी मैं कहूँ तो ये कई घरों का खाना होगा और कई घरों ने वो खाना देखा भी नहीं होगा, फेंक देते हैं। ये एक वाक्य नहीं है, ऐसे अगर आपको याद आएगा कहीं आपने सहरियाँ इफ्तारियाँ अगर आप करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं बना सकते भाई। आप कहीं सहरी में तो खैर हम इतने इनवाइट नहीं होते ना, सहरी में इनविटेशन की कोई सी सूरत बनती है, लेकिन अब तो इफ्तार पार्टी और इफ्तार की दावतें तो कितनी बढ़ेंगी ना। तो अब इफ्तार करेंगे तो जना मगरिब की नमाज से पहले पहले जो खाया खाया, वापस आए तो जना वो मेन्यू तब्दील, अब इसके बाद ईशा से पहले जो खाना खाना है तो वो उसके लिए मेन्यू तब्दील, वो खाएंगे तो फिर भागेंगे। जनाब तरावी पढ़नी है, ईशा पढ़नी, जिनको नमाज पढ़नी है मैं उनका कह रहा हूँ, जिनको नहीं पढ़नी बदकिस्मती के साथ, तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और नमाज पढ़े, वो तरावियाँ पढ़नी है 20 रकात हैं। तो यूं मतलब कि आप देखिए कि आप दावतों में हम एहतमाम करें, आप सब मिलकर कोशिश करें, मैं भी करूँ आप भी करें। मदनी चैनल हमारे लिए एक गाइडलाइन देता है, मदनी चैनल हमें एक सोच देता है, मदनी चैनल हमें एक डायरेक्शन देता है, एक विजन देता है, एक मकसद देता है मदनी चैनल। और डेफिनेटली एक शख्स बोले या चंद इस्लाम भाई बोले, बोलना अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप सीरियस लें अपने घर में, अपने दस्तरखान में, जहाँ आप दावत में जाते हैं वो, या जो खुद दावत करते हैं वो, या जो दावत के लिए खाना बनाते हैं पकाते हैं वो, सबको कोशिश करनी चाहिए कि अनाज को ज़ाया होने से बचाएं, रिस्क को ज़ाया होने से बचाएं, और अल्लाह पाक की इस नेमत की कदर करें। अल्लाह पाक हमें महंगाई की आफत से, तंगदस्ती की आफत से, और इस तरह अनाज ज़ाया करने की जो हमारे अंदर जो बुरी आदत है, अल्लाह पाक इन सब से हमें नजात अता फरमाए। सबक कामोस खबरें का मैंने आज एक ही सेगमेंट रखा, जो आप समझ गए होंगे कि ये सेगमेंट एक ही था, ताकि मैं 1 पॉइंट एजेंडे पर आपसे डिस्कस कर सकूँ, और जो मुझसे अल्लाह पाक की तौफीक से हो सका मैंने आपको अर्ज़ करने की कोशिश की है। इस पर और बोला जा सकता है, लेकिन मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ, बस करता हूँ, और जो मुझसे गलती हुई है अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। आमीन। بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
اے خدا